तारीख 12 नवंबर दिन मंगलवार। कार्यक्रम नमस्कार भारत के साथ मैं हूँ मानसी दास। महाराष्ट्र में राज्यपाल ने एनसीपी से की सरकार बनाने की पेशकश।
ये सारे खेल में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की है तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की भूमिका है।
अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाने की कोशिशें शुरू।
ट्रस्ट को बड़ा बनाएंगे ये लोग, क्योंकि बड़ा बनाने के नाते एक तो ये सबको संतुष्ट करना चाहते हैं, जितने सेक्ट हैं जो लोग आंदोलन में जुड़े रहे।
IAEA ने की पुष्टि, कहा ईरान कर रहा है यूरेनियम का संवर्धन।
I have just informed the IAEA Board of Governors about the resumption of uranium enrichment at Fordo. Last week,
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार संदीप राय से। महाराष्ट्र में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। बीजेपी के मैदान से हटने के बाद राज्यपाल ने शिवसेना को आमंत्रित किया, लेकिन समय खत्म होने के कारण एनसीपी को आमंत्रित किया गया। तेजी से बदलते घटनाक्रम में अब सबकी निगाहें एनसीपी और कांग्रेस पर लगी हैं। जानी मानी पार्श्व गायिका लता मंगेशकर की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है। जानकारी दे रही हैं मुंबई में मौजूद BBC संवाददाता मधुपाल।
लता मंगेशकर जी को 11 तारीख यानी पिछले कल ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनकी PR टीम ने एक बयान जारी किया है जिसमें बताया गया कि लता मंगेशकर जी को वायरल चेस्ट कंजेशन हुआ है। ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। अभी उनकी हालत ठीक है और बहुत जल्द उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है अस्पताल से, ऐसा उनके टीम ने बताया है।
ब्रिटेन में अगले महीने होने जा रहे मध्यावधि चुनाव में ब्रेक्सिट पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। पार्टी पर ब्रेक्सिट समर्थक वोटों को न बंटने देने का दबाव है। पार्टी के नेता नाइजेल फराज ने कहा है कि विपक्षी लेबर पार्टी की सीटों पर वो अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जानकारों का कहना है कि ब्रेक्सिट पार्टी के फैसले से कंजर्वेटिव पार्टी को फायदा मिल सकता है। SNP नेता निकोला स्टर्जियन ने कहा कि नाइजेल का कदम घातक है।
I have got no great love for the Conservative Party at all, but I can see right now.
आज की घोषणा बेशक इस बात का सबूत है कि बोरिस जॉनसन और नाइजेल फराज ने हाथ मिला लिए हैं। नाइजेल फराज को ब्रेक्सिट का जो भी तरीका स्वीकार्य है वो स्कॉटलैंड के लिए नुकसानदायक है। ये थे SNP नेता निकोल स्टर्जिन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। मैक्सिको ने बोलीविया के पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस को राजनीतिक शरण देने की घोषणा की है। रविवार को पुलिस और पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस के समर्थकों के बीच झड़पें हुईं। रविवार को मोरालेस ने इस्तीफा दे दिया था और अपने समर्थकों से विरोधियों का विरोध करने का आह्वान किया। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोरालेस के इस्तीफे को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है और कहा है कि वेनेजुएला और निकारगुआ के लिए ये एक कड़ा संदेश है। हांगकांग के नेता कैरी लैम ने कहा है कि हिंसा में शामिल प्रदर्शनकारी जनता के दुश्मन बन चुके हैं। पिछले 5 महीनों से चल रहे प्रदर्शन में सोमवार को पहली बार भारी हिंसा भड़की। इस घटना में प्रदर्शनकारियों से बहस करने वाले एक व्यक्ति को आग लगा दी गई, जबकि एक वीडियो में दिख रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने एक प्रदर्शनकारी को करीब से गोली मार दी है। दोनों पीड़ितों की हालत गंभीर है। प्रदर्शन आयोजक बोनी लेओंज ने कहा है कि हिंसा खत्म करना सरकार का काम है। परमाणु कार्यक्रमों पर निगरानी रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA ने कहा है कि ईरान ने फिर से यूरेनियम संवर्धन का काम शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की ओर से परमाणु समझौते के उल्लंघन की ये ताज़ा घटना है। इस समझौते से अमेरिका के एक तरफा हट जाने और फिर कड़े प्रतिबंध लागू करने के बाद ईरान ने इन समझौतों से दूरी बना ली है। पैसेंजर विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग ने कहा है कि वो 737 मैक्स विमान को जनवरी से व्यावसायिक उड़ानों के लिए उतारेगी। इथियोपिया और इंडोनेशिया में विमान दुर्घटना के बाद इस साल की शुरुआत में इन विमानों की उड़ानों को रोक दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र के मध्य पूर्व मामलों के दूत ने इसराइली सुरक्षा बलों की गोली से मारे गए फलस्तीनी व्यक्ति की मौत की जाँच की मांग की है। अरबाउ रिफ्यूजी कैंप में हिंसा फैल गई थी जिसके बाद ये घटना घटी। निकोलेओ मलादनेव ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि उमर अल बदावी ने पुलिस को कोई खतरा था। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म के लिए अगले साल के एकेडमी अवार्ड में ऑस्ट्रेलिया के फिल्म को खारिज कर दिया गया है। BBC समाचार।
BBC बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का अभिवादन। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र से, जहां सरकार बनाने की कोशिशों में रोज नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अब एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तीसरी बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए कहा है। इससे पहले राज्यपाल ने पहले बीजेपी और फिर शिवसेना को सरकार बनाने के लिए बुलाया था, लेकिन जहां बीजेपी ने खुद सरकार बनाने से इनकार कर दिया था, वहीं शिवसेना ने इसके लिए 2 दिन का वक्त मांगा था, जो उसे नहीं मिला। अब इसके बाद सरकार बनाने की संभावनाओं को लेकर कांग्रेस और एनसीपी की बातचीत जारी है। पहले सुनिए इस बारे में कांग्रेस नेता माणिकराव ठाकरे ने क्या कहा।
पवार साहब के साथ मैडम की बात हुई है और उन्होंने भी कहा हमारी भी चिट्ठी गई नहीं है, आपकी भी चिट्ठी गई नहीं है, तो इस बारे में बात हुई। तो बाद में ये तय हुआ कि यहाँ से पक्ष एक प्रमुख जो है 2 लोगों को प्रतिनिधि करके यहाँ से पवार साहब के साथ चर्चा करने के लिए भेजा जाएगा, और चर्चा करने के बाद जो भी बात तय होगी उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना, वो पवार साहब और कांग्रेस के जो भेजे हुए दोनों प्रतिनिधि है वो एक दूसरे के साथ बातचीत करके वो आगे कदम बढ़ाएंगे।
महाराष्ट्र में अब मामला और जटिल लग रहा है, क्योंकि राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए आज शाम के 8:30 बजे तक का वक्त दिया है और राज्य में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। रही बात एनसीपी की, तो उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर भी उनके सामने बहुमत साबित करने की चुनौती होगी। आज दिन में क्या हलचल रहेगी, यही जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की मुंबई में मौजूद बीबीसी संवाददाता मयूरेश कुन्नूर से।
आज सबसे बड़ा फोकस रहेगा एनसीपी के ऊपर, क्योंकि उनको आज शाम 8:30 बजे तक राज्यपाल को बताना है कि वो सरकार बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। वो कॉलिशन में लड़े कांग्रेस के साथ और दोनों को मिला के सिर्फ 98 विधायक हैं, तो वो तो मैजिक फिगर उनके पास नहीं है। अगर उनको मैजिक फिगर लाना है तो क्या वो शिवसेना को साथ में लेंगे? शिवसेना के लिए सपोर्ट करने के लिए एनसीपी तैयार थी, तो क्या शरद पवार किसी तरह से शिवसेना को सपोर्ट करने के लिए कहेंगे उनकी पार्टी के लिए, ये देखना जरूरी है और वो आज शाम तक पता चलेगा। जब एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल से हमने पूछा तो उन्होंने शिवसेना के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया रात में। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है, अगर एनसीपी दावा करती है तो कॉलिशन के जो उनके लीडर हैं, बाद में जाकर जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्हें जब बताना पड़ेगा, अगर उन्होंने शिवसेना को प्रॉमिस किया है कि उनका मुख्यमंत्री सीएम बनेगा, तो क्या उद्धव ठाकरे को एनसीपी ये बनाएगी? अभी ये तो बहुत बड़ी अटकलें हैं, लेकिन ये हो सकता है। अपने कर्नाटक में अगर देखा तो कर्नाटक में कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन फिर भी कुमार स्वामी कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, उनको कोअलिशन का लीडर किया था। एनसीपी शिवसेना ही किसी नेता को लीडर बनाएगी, अभी ये भी बहुत अटकलें लगा रही है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति बहुत तेज अफवाहों से अभी भरी हुई है।
एनसीपी और कांग्रेस साथ तो आ जाएंगी, क्योंकि वो चुनाव से पहले भी दोनों पार्टियां साथ ही में थी, लेकिन एक बात ये है कि दारोमदार है वो शिवसेना पर निर्भर करता है। अब
बिल्कुल, अभी शिवसेना पर भी निर्भर करता है, अभी उनकी भूमिका क्या रहेगी, क्या शिवसेना का क्लेम वाकई खत्म हो चुका है? क्योंकि वो कह रहे थे, आदित्य ठाकरे ने कहा कि इन प्रिंसिपल दोनों पार्टी यानी कांग्रेस और एनसीपी मान गई है, तो क्या इसमें से कोई रास्ता निकल आएगा? अगर नहीं निकल आएगा तो इनके लिए ये सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल सेटबैक है, वो आगे क्या करेंगे? तो शिवसेना के ऊपर भी अब निर्भर करता है कि क्या वो एनसीपी को सपोर्ट करेगी, या फिर वो वापस बीजेपी से कुछ बातें करने लगेगी, या फिर इन दोनों से अलग होकर एब्सटेन रहने की कोशिश करेगी। तो शिवसेना के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर है, और ये कहना बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा कि उनके सारे क्लेम्स खत्म हो चुके हैं। राजनीति में सब कुछ पॉसिबल है और महाराष्ट्र की राजनीति में किसी के पास भी नंबर्स नहीं है, तो कुछ भी पॉसिबल है।
महाराष्ट्र की राजनीति में नित नए मोड़, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं, जानकारी दे रहे थे मयूरेश कुन्नूर। बीजेपी और शिवसेना ने पहले मिलकर चुनाव लड़ा, फिर चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी से सीएम की मांग पर शिवसेना ने बीजेपी के साथ अपने रिश्ते तोड़ दिए। इसके बाद राज्यपाल से सरकार बनाने की पेशकश हुई, लेकिन शिवसेना इसके लिए और वक्त चाहती थी, जो उसे नहीं मिला। राज्यपाल ने गेंद एनसीपी के पाले में उछाल दी, तो क्या शिवसेना अपने ही जाल में उलझ कर रह गई है? जिस पार्टी के साथ उसने चुनाव में प्रतिद्वंदिता की थी, उसके लिए क्या अब वही कांग्रेस बेहद महत्वपूर्ण बन सकती है? बीबीसी संवाददाता भूमिका राय ने यही जानने के लिए वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स से बात की, जो मुंबई में मौजूद हैं।
बीजेपी जो है, शिवसेना भी एक हिंदुत्ववादी पार्टी है और उसका बेस खाना चाहती है। शिवसेना के बलबूते पर ही उन्होंने महाराष्ट्र में अपनी जो है नींव बनाई है, क्योंकि बीजेपी को तो कोई नहीं पूछ रहा था। जब बाला साहब ठाकरे जीवित थे तब उनके करिश्मे पे, उनके जनाधार पर ही भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अपनी जमीन जो है, राजनीतिक जमीन तैयार की है। और आज जब अगर शिवसेना ये कहती है कि हमको ढाई ढाई साल का ये देना चाहिए, तो उसमें गलत बात कौन सी है? तो ये जब भारतीय जनता पार्टी ने नकारा तो शिवसेना जो है वो प्रस्ताव लेके सामने आ गई।
लेकिन अब यहाँ पे कांग्रेस की भूमिका कितनी अहम हो गई है?
ये सारे खेल में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की है तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की भूमिका है, क्योंकि जो भी होगा वो डिसीजन कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस दोनों साथ मिलकर लेंगे। ये शरद पवार जी ने एक बार नहीं 10 बार क्लियर किया था। उसके बावजूद शिवसेना के साथ जाना है या नहीं जाना है, इस मसले पर कांग्रेस का आला कमान दो दो तीन तीन दिन से क्या सोच रहा है, ये मेरे आकलन के परे है। क्योंकि अगर शिवसेना आइडियोलॉजिकली उनको सही नहीं लगती है तो उनका डिसीजन एक दिन में होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो बात करते रहे। इसका कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक चुन के आए हैं, वो सारे के सारे विधायक ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की सत्ता से दूर रखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने 5 साल सत्ता चलाई है वो देखते हुए ये सारे MLAs नाराज हैं। तो उन्होंने अपने आला कमान को ये बात बताई, लेकिन आला कमान ये बात समझने के लिए क्यों तैयार नहीं है, ये केवल एक ही या शायद 2 लोग या शायद 3 लोग बता सकते हैं। उनका नाम है सोनिया गांधी, दूसरा नाम है राहुल गांधी और शायद तीसरा नाम है प्रियंका गांधी। ये डिसीजन लेने से क्यों हिचकिचा रहा है ये समझ में नहीं आता है। अगर उनको ये लगता है कि विचारधारा के बलबूते पर शिवसेना जैसी पार्टी को से सहमति दर्शाना, उनको सपोर्ट करना ये गलत बात है, तो उनको सामने आके ये बात सबके सामने बोलनी चाहिए।
अब महाराष्ट्र की राजनीति को आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश होगी कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उनको वक्त मिलेगा, यहाँ पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जाएगी। अगर वो कोशिश अगर सक्सेस नहीं होती है तो फिर अगली पॉलिटिक्स होगी। लेकिन एक बात इसमें जरूर है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे इनके बीच में जो मीटिंग हुई है, इन दोनों नेताओं में यह तय हुआ है, ऐसा कई लोगों का कहना है जो दोनों के नजदीकी है, कि अगर यहाँ पर राज्यपाल प्रेसिडेंट्स रूल लगाने के लिए केंद्र को कहते हैं तो उस निर्णय के खिलाफ में पूरे महाराष्ट्र में लोगों में जाकर इस बारे में जन जागृति अभियान हम छेड़ेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की जो राजनीति होगी वो बहुत उसमें काफी गर्माहट आएगी।
महाराष्ट्र में आने वाले दिन बेहद अहम, विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स।
खबर सच है अगर BBC पर है।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम के तहत परमाणु संवर्धन का काम शुरू कर दिया है। साल 2015 में परमाणु करार से अमेरिका के पीछे हटने के बाद से ईरान ने कई बार कहा है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाएगा, लेकिन 2015 के बाद पहली बार IAEA ने इसकी पुष्टि की है। सुनिए हमारे सहयोगी संदीप राय की रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन करना शुरू कर दिया है। एजेंसी का कहना है कि देश में एक ऐसी जगह यूरेनियम के कण मिले हैं जिसे ईरान ने घोषित नहीं किया है। माना जा रहा है कि यह जगह तेहरान के तुर्कुजाबाद जिले में है। ईरान ने पहले ही सफाई दी थी कि यह एक कारपेट क्लीनिंग फैक्ट्री है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए IAEA डायरेक्टर कॉर्नेल फेरुटा ने कहा कि ईरान अपने वादे से पीछे हट रहा है।
I have just informed the IAEA Board of Governors about the resumption of uranium enrichment at Fordo.
मैंने IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सूचना दी है कि फुर्दोवा में यूरेनियम संवर्धन बहाल हो गया है। ये ईरान के लिए महत्वपूर्ण है कि वो देश में उस जगह के बारे में एजेंसी को संतोषजनक जवाब दे जहां पे संवर्धन हो रहा है। इस बारे में मैंने पिछले हफ्ते भी बोर्ड को जानकारी दी थी। ये थे IAEA डायरेक्टर कार्नेल फेरुटा के शब्द। एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने अपने फुर्दो भूमिगत परमाणु प्रतिष्ठान में यूरेनियम संवर्धन करना शुरू कर दिया है। साल 2015 में हुए परमाणु समझौते से अमेरिका के हटने के बाद ईरान ने भी इससे किनारा कर लिया। एजेंसी का कहना है कि ईरान की ओर से समझौते के उल्लंघन का ये ताजा मामला है। संवर्धित यूरेनियम को परमाणु रिएक्टर के ईंधन के साथ साथ परमाणु हथियार बनाने के लिए भी काम में लाया जा सकता है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने पिछले हफ्ते कहा था कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल जब समझौते से खुद को अलग कर लिया और नए प्रतिबंध लगाए तो देश का तेल निर्यात लड़खड़ा गया। परमाणु समझौते के तहत ईरान ने IAEA जांचकर्ताओं को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की जांच करने की अनुमति दी थी। उसका कहना था कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। इसके बदले अमेरिका ने प्रतिबंधों में ढील दी थी। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ एक नए समझौते का दबाव बनाया जाए जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी पूरी तरह रोक लगाने की मांग है। लेकिन रूहानी इससे पहले ही इनकार कर चुके हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे संदीप राय। अब रुख भारत का। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन की संभावनाओं की तलाश शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित करके ट्रस्ट के गठन का काम इसी महीने तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच साधु संतों से लेकर कई हिंदू संगठनों तक में ट्रस्ट के स्वरूप को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सुनिए लखनऊ से हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही केंद्र सरकार ने ट्रस्ट के गठन के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया और बताया जा रहा है कि इसका गठन इसी महीने हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सरकार को 3 महीने का समय दिया है। फैसले के अगले ही दिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर विभिन्न धर्माचार्यों के साथ हुई बैठक को भी इसी क्रम में देखा जा रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष और पूर्व सांसद रामविलास वेदांती कहते हैं,
मुझे विश्वास है कि ट्रस्ट में बहुत अच्छे अच्छे लोग रहेंगे। ट्रस्टियों के द्वारा मंदिर की रूपरेखा क्या क्या तय की जाएगी, ये आने वाला समय भारत सरकार का आदेश होता है, तो मैं निश्चित ही उस ट्रस्ट में रहूँगा। हमसे लोगों ने कई बार इस बात को पूछा है, लेकिन भारत सरकार का जो भी निर्णय होगा उसका मैं स्वागत।
संस्कृति मंत्रालय के अधीन बनने वाले इस ट्रस्ट के लिए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का मॉडल अपनाए जाने की संभावना है, ताकि केंद्र और राज्य सरकार ट्रस्ट में सदस्यों को नामित कर सकें। इसके अलावा कुछ अन्य धर्मार्थ ट्रस्टों का भी अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रस्ट में शामिल कौन होगा, क्योंकि मंदिर आंदोलन से न जाने कितनी संस्थाएं जुड़ी थी। वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं,
ट्रस्ट को बड़ा बनाएंगे ये लोग, क्योंकि बड़ा बनाने के नाते एक तो ये सबको संतुष्ट करना चाहते हैं, जितने सेक्ट हैं, जो लोग आंदोलन में जुड़े रहे, जिन लोगों ने जो आज किनारे हैं, और किसी जगह से मंदिर कैसा बने, क्या बने, क्या नहीं बने, इस तरह को लेकर सवाल न खड़े हो। मंदिर का जो नक्शा तैयार हुआ है वो विहिप ने तैयार करा है, तो उस पर एक्सेप्टेंस भी लेनी है।
वही निर्मोही अखाड़े के एक साधु कहते हैं कि किसी की भी अवहेलना करना सरकार के लिए मुश्किल होगा। बताया जा रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट का गठन करके सरकार अगले साल रामनवमी तक मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम को संपन्न कराने की कोशिश करेगी। साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं। राम मंदिर पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन जानकारों के मुताबिक सरकार इसके निर्माण कार्य में तेजी के जरिए इसका श्रेय लेने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन योगेश मिश्र कहते हैं कि इसका चुनावी लाभ बीजेपी को बहुत ज्यादा मिलेगा, ऐसी उम्मीद कम ही है।
इस मुद्दे ने बहुत दिन तक पॉलिटिक्स को प्रभावित किया, और इसका दुर्भाग्य यह था कि इस मुद्दे में कांग्रेस पार्टी ने भी जितना काम किया है उसको ओन नहीं किया, तो कांग्रेस ने ओन नहीं किया, बीजेपी ओन करती रही, ये इशू डिस्प्यूट होता चला गया। और पिछले दिनों ये भारतीय जनता पार्टी को भी लग गया कि इस इशू में अब ओन नहीं है। एक चीज बहुत मार करने की है कि 2010 में जब मंदिर पर फैसला आया था तो पूरे देश में कुछ भी नहीं हुआ था, न हो अल्लाह, न शोर शराबा, न पटाखा फूटना, न झगड़ा, न फसाद। 2019 में जब फैसला आया तब भी कुछ नहीं हो रहा पूरे देश में। तो देश की जो सबसे जो बड़ी जमात है वो लोगों के एजेंडे से ये निकल गया है। अब मुट्ठी भर लोगों के पास ये है एजेंडा, जो 60 के ऊपर के हैं और जिनमें अब दमखम बचा नहीं है।
बहरहाल उम्मीद यही जताई जा रही है कि राम मंदिर निर्माण की रूपरेखा तय करने वाले ट्रस्ट का गठन जल्द ही हो जाएगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से पहले ही इसे पूरा किया जा सके। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
बीजेपी ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने दो अहम राजनीतिक एजेंडे का काम पूरा किया है, जैसे अयोध्या मंदिर, बाबरी मस्जिद विवाद जमीन और अनुच्छेद 370। लेकिन इसके बाद अब उसका अगला एजेंडा क्या हो सकता है? BBC संवाददाता नवीन नेगी ने वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह से संपर्क साधा और उनसे यही पूछा कि अब आगे किन मुद्दों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी।
दो मुद्दे तो ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि इस विंटर सेशन में पार्लियामेंट के आएंगे, NRC और सिटीजनशिप बिल। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काफी समय से काम हो रहा है और पार्टी उसको लेकर बहुत गंभीर है। और दूसरा जो है कॉमन सिविल कोड बचता है, जो पार्टी के तीन कोर इश्यूज थे, 370, अयोध्या और कॉमन सिविल कोड। लेकिन कॉमन सिविल कोड में मुझे लगता है इसमें काफी समय लगेगा। जो घोषित रूप से कहा जा रहा है, पार्टी की ओर से कहा जा रहा था पहले भी, इसके लिए कंसेंसस बनाने की जरूरत होगी। कोई बिल का कोई प्रारूप बने और वो सर्कुलेट हो, उस पर लोगों के रिएक्शंस मांगे जाए, ये इस तरह से होगा तो शायद ज्यादा आसान होगा उस पर सहमति।
क्या अभी तक सर यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में कुछ काम अभी तक हुआ है?
नहीं, अभी दिखाई तो नहीं देता। ऐसे ऊपर से अंदर कोई तैयारी हो तो अलग बात है, लेकिन सरकार के तौर पर, पार्टी के तौर पर जो है, अभी तो कोई काम ऐसा होता हुआ दिखा नहीं।
अगर इसमें अड़चने आप बताएं, क्या क्या परेशानियां इस बिल को बनाने में आ सकती हैं सरकार के सामने?
देखिए, बिल को बनाने में सबसे बड़ी परेशानी ये आएगी कि अलग अलग धर्मों में शादी ब्याह को लेकर और संपत्ति को लेकर अलग अलग कानून है, जो धार्मिक कानून है वो अलग अलग है, उन सबको एक करना। उसमें किसी धर्म के मानने वालों का नुकसान भी हो सकता है और किसी को फायदा भी हो सकता है, तो वो एडजस्टमेंट की कैसे सबको बराबरी पर लाएं तो नुकसान किसी का ज्यादा ना हो, और उसके लिए उस समुदाय के लोगों में कोई इस तरह की फीलिंग ना आए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ये मुझे लगता है कि शायद 370 से ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा। 370 एक लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव काम था जो कर दिया सरकार ने। इसमें चूंकि धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, खासतौर से कस्टम्स जुड़े हुए हैं जो अलग अलग धर्म के मानने वालों के।
बीजेपी का अगला कदम क्या हो सकता है, विश्लेषण कर रहे थे प्रदीप सिंह। और अब एक नजर आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों पर, और स्टूडियो में अखबारों के साथ हैं संदीप राय। संदीप जी, बताएं क्या है आज की सुर्खियां।
जी मानसी, दिल्ली से प्रकाशित होने वाले आज के सभी अखबारों में महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल को सुर्खियां बनाया गया है। पहले बीजेपी और फिर शिवसेना के असफल होने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल ने NCP को सरकार बनाने का न्योता दिया था, लेकिन गठबंधन सरकार की गणित अभी भी उलझी हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार शिवसेना NDA और मोदी सरकार से अलग हो गई, लेकिन सोनिया ने अंतिम समय में बाधा पैदा कर दी। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि फैक्ट्रियां 8 साल में पहली बार सबसे बड़ी सुस्ती का सामना कर रही हैं। उद्योगों का उत्पादन नकारात्मक हो गया है। सितंबर में ये गिरावट 4.3% पहुंच गई। औद्योगिक उत्पादन में ये 8 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। पिछले महीने देश में बिजली की मांग में भी 13.2% की कमी हुई थी, जो 12 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। द हिंदू की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि मंगलवार से कश्मीर में ट्रेन सेवा की बहाली हो जाएगी। 3 महीने पहले जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था तो ट्रेन सेवा भी ठप हो गई थी। अमर उजाला अखबार में पहले पन्ने पर एक खबर छपी है जिसमें कहा गया है कि PM राष्ट्रपति की तस्वीर के दुरुपयोग पर 6 माह तक की सजा हो सकती है, कैद हो सकती है, और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। पहले ये जुर्माना 500 रुपए के आसपास हुआ करता था। तो ये खबर है। और आगे बढ़ते हैं, नवभारत टाइम्स के अनुसार JNU में फीस वृद्धि को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस में झड़प हो गई है। प्रदर्शन का इतना तीखा हो गया था कि HRD मिनिस्टर भी उस प्रदर्शन में 6 घंटे तक घिरे रहे थे।
और इस प्रदर्शन की तस्वीरें कई अखबारों में हैं।
हाँ, इस प्रदर्शन की तस्वीरें लगभग दिल्ली से छपने वाले अखबारों में, सभी अखबारों में हैं।
जी, अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए धन्यवाद संदीप राय। اور اب وقت ایک خاص رپورٹ کا۔ آج سکھوں کے پہلے گرو بابا گرو نانک دیو کا 550واں پرکاش پرو ہے۔ اسی مہینے کی 9 تاریخ کو سکھ شردھالوؤں کی سالوں کی خواہش پوری ہوئی اور پاکستان میں گرو نانک کی کرم ستھلی کرتارپور گرودوارے تک بنا خاص کرتارپور گلیارا کھولا گیا۔ حالانکہ کرتارپور جانے والے پہلے جتھے میں ادھکتر وی آئی پی لوگوں نے ہی شرکت کی، لیکن اس کے بعد سے یہ کوریڈور عام لوگوں کے لیے بھی کھول دیا گیا ہے۔ پرکاش پرو کو لے کر دونوں ملکوں میں کس طرح کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، سنیے بی بی سی سنواددتا بھومیکا رائے کی رپورٹ۔
سکھ دھرم کے سنستھاپک اور سکھوں کے پہلے گرو گرو نانک دیو جی کا آج 550واں پرکاشوتسو ہے۔ گرو نانک دیو جی کو ماننے والے صرف سکھ نہیں ہیں، انہیں دوسرے دھرموں کے لوگ بھی مانتے ہیں۔ ایسے میں گرو نانک دیو کو ایک سانجھے گرو کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جنہیں ماننے والے کسی ایک دھرم کے نہیں۔ حالانکہ پرکاش پرو کا آیوجن ہر سال کیا جاتا ہے، لیکن یہ پرکاش پرو کچھ خاص ہے، اور اس کا سب سے بڑا کارن ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کرتارپور کوریڈور کو کھول دیا گیا ہے، وہ جگہ جہاں گرو نانک دیو نے اپنا آخری وقت گزارا تھا۔ آج گرو نانک دیو کے پرکاش پرو پر امید کی جا رہی ہے کہ بڑی سنکھیا میں لوگ یہاں جمع ہوں گے، لیکن اگر گرو نانک دیو کے جیون کو 3 چرنوں میں بانٹیں تو ان کے جنم استھان ننکانہ صاحب، سلطان پور لودھی اور کرتارپور شہر کا خاص مہتو ہے۔ ننکانہ صاحب آخر خاص کیوں ہے؟ ننکانہ صاحب آج کے پاکستان میں ہے، جہاں گرو نانک دیو جی کا جنم ہوا تھا۔ یہ جگہ لاہور سے قریب 1.5 گھنٹے کی دوری پر ہے۔ سکھ شردھالو ہر سال یہاں ہزاروں کی سنکھیا میں درشن کرنے آتے ہیں۔ ہمارے سہیوگی رویندر سنگھ رابن بتاتے ہیں،
پرکاش اتسو کا مطلب کچھ اسپیشل تو نہیں ہے، لیکن اس دن کو اسپیشل مانتے ہوئے جو سکھ دھرم کے لوگ ہیں وہ گرودواروں میں جاتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے ان کی کہ جہاں پہ سروور ہیں وہاں پہ وہ اشنان کریں اس سروور کے اندر، پھر اس کے بعد جو دھارمک کاریکرم ہیں وہ گرودواروں میں الگ الگ ٹائم پر چلتے ہیں، جس میں گرو نانک کی بانی کے بارے میں، گرو نانک کے بارے میں اور سکھ دھرم کی باقی گروؤں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ایون بھارت کے بھی بہت سارے شہروں میں اور پنجاب، بھارت سرکار نے یہاں تک کہہ دیا کہ دنیا میں جہاں جہاں پر بھی بھارت سرکار کی ایمبیسیز ہیں وہاں پہ یہ سیلیبریشنز ہوں گی۔
بی بی سی کے سہیوگی علی قاسمی اس وقت ننکانہ صاحب وہیں موجود ہیں۔ انہوں نے ہمیں وہاں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح کی تیاریاں وہاں چل رہی ہیں۔
پوری دنیا سے جو سکھ برادری ہے، جو سکھ مرد اور خواتین ہیں، وہ پوری دنیا سے جو ہے وہ ننکانہ صاحب کے شہر میں جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، اور تقریباً ان کو ایک ہفتے سے ان کا ننکانہ صاحب میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں کیمپ سائٹس میں، ہوٹلز میں۔ ننکانہ صاحب میں ایک لگتا ہے کہ جیسے وہاں پہ اس شہر اپنے سائز سے تقریباً ڈبل ٹرپل ہو چکا ہے، کیونکہ اتنے یاتری آئے ہوئے ہیں شہر میں۔ ننکانہ صاحب میں جو مین سب سے بڑا گرودوارا ہے، گرودوارا جنم استھان، وہاں سے یہ جلوس نکلے گا۔
سلطان پور لودھی وہ جگہ ہے جہاں گرو نانک دیو نے 14 سال بتائے۔ ہمارے سہیوگی رویندر سنگھ رابن سے جب ہم نے یہ پوچھا کہ وہاں پر پرکاش پرو کو لے کر کیا تیاریاں چل رہی ہیں، تو انہوں نے ہمیں بتایا،
سلطان پور لودھی کپورتھلا کے پاس ایک جگہ پڑتی ہے، وہاں پہ یہ اتہاسک جگہ لوگ مانتے ہیں، ان سے ریلیٹڈ وہاں پہ گرودوارے ہیں، اور ان گرودواروں پہ سرکار نے انتظام کر رکھے ہیں الگ الگ طریقے سے۔ سیلیبریشن 12 تاریخ تک ہونی تھی، لیکن شردھالوؤں کا آنا جانا اتنا زیادہ ہے، سرکار نے وہ سیلیبریشن بھی جو ہے وہ 20 تاریخ تک کر دی ہیں، اگلے 10 دن اور بڑھا دیے ہیں، 8 دن بڑھا دیے ہیں۔
مانیتاؤں کی مانے تو گرو نانک دیو 1522 میں کرتارپور آئے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کے 18 سال یہیں گزارے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ کرتارپور میں جس جگہ گرو نانک دیو کی موت ہوئی وہاں پر یہ گرودوارا بنایا گیا تھا۔ گرودوارے کے اندر ایک کنواں بھی ہے، اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ کنواں گرو نانک دیو جی کے سمے سے ہے، اور اس کارن اس کنویں کو لے کر شردھالوؤں میں کافی مانیتا ہے۔ بھومیکا رائے، بی بی سی، دلی۔
اور اب چلتے چلتے مکھیہ سماچار ایک بار پھر سندیپ رائے سے۔
بی بی سی سماچار۔ مہاراشٹر میں تیسری بڑی پارٹی ہونے کے ناطے راجپال نے این سی پی کو سرکار بنانے کا نیوتا دیا ہے۔ میکسیکو نے بولیویا کے پورو راشٹرپتی ایوو موریلس کو راجنیتک شرن دینے کی گھوشنا کی ہے۔ ہانگ کانگ پردرشن میں ہنسا بھڑکی، 2 لوگوں کی حالت گمبھیر۔ برٹین میں اگلے مہینے ہونے جا رہے مدھیاودھی چناؤ میں بریکسٹ پارٹی اپنے امیدوار نہیں کھڑا کرے گی۔ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान ने फिर से यूरेनियम संवर्धन का काम शुरू कर दिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज माफ कीजिएगा नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। अगला प्रसारण दिन भर आज शाम। तब तक मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।